नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलसवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई मूलभूत सुविधाओं की घोषणा की। दिल्ली सरकार गोवा में हुए अग्निकांड को देखते हुए राजधानी के सभी होटलों, रेस्तरों और बार की व्यापक जांच कराएगी। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश वर्मा ने मुंडका विधानसभा क्षेत्र स्थित कंझावला कराला नाले के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास और सरस आजीविका खाद्य महोत्सव 2025 के अंतिम दिन खाने के शौकीन और हस्तशिल्प प्रेमियों में दिखा भारी उत्साह। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान असाधारण कलात्मक निपुणता और भारत की समृद्ध और विविध हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एक रिपोर्ट।
यह पुरस्कार शिल्पियों को अपनी कला को प्रदर्शित करने और शिल्प को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कला विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने के साथ ही सांस्कृतिक पहचान और लोगों के आजीविका का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। उन्होंने बताया, यह क्षेत्र देश के 32 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।
हस्तशिल्प क्षेत्र युवा उद्यमियों और डिजाइनर के लिए उद्यम स्थापित करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। शिल्पकारों का स्किल डेवलपमेंट करके नई टेक्नोलॉजी अपनाकर और निवेश बढ़ाकर युवा उद्यमी से हस्तशिल्पी के उत्पादन और बिक्री को नई ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है।
इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बताया कि इस क्षेत्र में 68% महिलाएं कार्यरत हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई गति मिल रही है। इस अवसर पर कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हाल ही में GST दरों को 18% से घटाकर 5% करने से भी इस क्षेत्र को लाभ हो रहा है। 2023 के लिए कलात्मक वस्त्र श्रेणी में शिल्प गुरु पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की माधुरी मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद यह सम्मान प्राप्त करने पर मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करती हूं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की रहने वाली शिल्पकार प्रिया ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि उन्हें 30 वर्ष से कम आयु के युवा शिल्पकार की श्रेणी में आज यह पुरस्कार मिला है।
मुझे ये अवार्ड लेकर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने हिमाचल को एक नेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं अपने साथ अपने गुरु, अपने फैमिली और अपने हिमाचल को आगे लेके जाना चाहती हूँ।
पिछले 2 वर्षों में कुल 12 कारीगरों को शिल्प गुरु और 36 शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। अंकित के साथ सौम्या परिक्रमा के लिए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भलसवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, प्राथमिक विद्यालय, पार्क, दुकानों और पार्किंग की व्यवस्था करने की घोषणा की। उन्होंने ये घोषणा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बने फ्लैट्स के निरीक्षण के दौरान की। उन्होंने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ये फ्लैट्स तो वर्षों पहले तैयार हो गए थे, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण ये अब तक खाली हैं और अब तक जर्जर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भलसवा क्षेत्र को सभी आवश्यक सुविधाओं से विकसित करने और झुग्गी वासियों को सम्मानजनक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है।
हमने जो प्लान दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के लोगों के लिए बनाया है, उसमें इन फ्लैट्स को पूरा मॉडल बना के जहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटी होगी, ई रिक्शा के लिए सेफ्टी के साथ में चार्जिंग स्टेशन होंगे, दुकानें होंगी जहाँ वो अपना कारोबार कर सकते हैं, अपनी रेडी लगा सकते हैं, सारे व्हीकल्स के खड़ी करने के लिए सेफ पार्किंग होगी, उनके लिए प्राइमरी स्कूल होगा, आयुष्मान मंदिर होगा। एक ऐसा मॉडल दिल्ली सरकार तैयार कर रही है जो लाखों गरीब परिवारों के लिए केवल सपना थे।
इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार ने इन फ्लैट्स को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विकसित करके उन्हें रहने योग्य, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास के रूप में तैयार करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि राजधानी के हर झुग्गीवासी को बेहतर जीवन, सुरक्षित आवास और सम्मानजनक माहौल देना दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य है। दिल्ली सरकार गोवा में हुए अग्निकांड के मद्देनजर राजधानी के सभी होटलों, रेस्टोरेंट और बार की व्यापक जांच कराएगी। दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने आज गोवा अग्निकांड सहित नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता, पार्कों की व्यवस्था, कर्मचारियों की कमी, आवारा पशुओं की समस्या तथा वायु प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उपस्थित पार्षदों द्वारा दिए गए सुझावों पर समिति ने विचार विमर्श किया और अधिकारियों को ठोस, समयबद्ध और परिणामों पर आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्रीमती शर्मा ने कहा कि दिल्ली में सभी होटलों, रेस्तरां और बार की व्यापक जांच कराई जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रतिष्ठानों के पास वैध लाइसेंस हों और वो अग्नि सुरक्षा तथा अन्य अनिवार्य दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहे हों। उन्होंने कहा कि राजधानी में सरकार में मंत्री रविंदर सिंह इंद्राज ने आज रोहिणी सेक्टर 26 में निर्माणाधीन कोर्ट परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि इस परियोजना की प्रगति, कार्य गुणवत्ता और समय सीमा का विस्तृत आकलन करते हुए श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्धारित मानकों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि हर काम समय पर पूरा हो और सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ बेहतर न्यायिक सुविधाएं भी प्रदान करे। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश वर्मा ने मुंडका विधानसभा क्षेत्र स्थित कंझावला कराला नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के लगातार प्रयासों से राजधानी में मूलभूत ढांचे का मजबूत आधार तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना की लागत लगभग 21 करोड़ से ज्यादा है, जिससे क्षेत्र में जल निकासी, स्वच्छता और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने आज दिल्ली नगर निगम मुख्यालय से 17 जेसीबी लोडर और 2 सुपर सकर को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पहल शहर की स्वच्छता अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक सुपर सकर सेट में 1 मुख्य यूनिट, 2 डंप टैंक और 1 पानी की टंकी शामिल है। उन्होंने कहा कि नई मशीनों की तैनाती से नालों की सफाई, कचरा उठाने और डंपिंग के कामों में तेजी आएगी।
2 सुपर सकर और हमारे 17 जो जेसीबी आज हमने जनता को समर्पित किए, अब हमारे पास लगभग 8 के करीब सुपर सकर्स हो गई हैं और 54 के करीब हमारे पास जेसीबी लोडर्स हो गए। आने वाले समय में जल्द ही इनकी और संख्या बढ़ेगी और दिल्ली को हम कूड़ा मुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ और हरित बनाने में 100% प्रयास करेंगे।
दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर सिंह इंद्राज ने बवाना स्थित बेगमपुर वार्ड से जुड़े विभिन्न जनहित विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं, बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और विकास के कामों की प्रगति पर उन्होंने दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनता की हर समस्या के ठोस समाधान और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज दिल्ली में हुए बम धमाके के मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला निवासी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को हिरासत में लिया। ये इस मामले में गिरफ्तार किया गया 8वां आरोपी है। एजेंसी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि बिलाल नसीर मल्ला ने हमले की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में 4 मुख्य अधिकारियों और अन्य प्राइवेट व्यक्तियों और संस्थाओं सहित 14 व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर ली है। निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 4 निविदाओं के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सरस आजीविका खाद्य महोत्सव 2025 के अंतिम दिन आज खाने के शौकीनों और हस्तशिल्प प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिला। 29 नवंबर से शुरू हुए इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये आयोजन महिला सशक्तिकरण की मिसाल के रूप में सामने आया है।
सरस आजीविका फूड महोत्सव 2025 में 25 राज्यों के 500 से अधिक पकवानों ने आगंतुकों को देश की पाक विरासत का एक जीवंत और यादगार अनुभव कराया। देश भर से लगभग 300 लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राजधानी के सुंदर नर्सरी में अपनी बेहतरीन क्षेत्रीय खाद्य विशेषताएं पेश की। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह महोत्सव सही मायने में महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है कि कैसे यह महिलाएं सम्मान के साथ कमा रही है, अपने परिवार को मजबूत कर रही है और देश की प्रगति में योगदान दे रही है। उन्होंने इस दौरान लखपति दीदियों का अभिवादन किया और भारत की ग्रामीण परंपराओं से जुड़े स्वादिष्ट पकवान पेश करने के लिए उनकी सराहना की। 60 से ज्यादा स्टॉल, 50 लाइव फूड काउंटर और 12 प्राकृतिक खाद्य उत्पादों वाले स्टॉल के साथ सरस फूड महोत्सव मात्र एक आयोजन ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संगम रहा, जहां महिला सशक्तिकरण की नई कहानियां गढ़ी गई। शिवांग और आदर्श के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
नई दिल्ली नगर परिषद एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा और उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज नेहरू पार्क स्थित सृजन आर्ट गैलरी का दौरा किया। इस अवसर पर एनडीएमसी के उपाध्यक्ष ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य भविष्य में मूर्ति पार्क के लिए एक उपयुक्त जगह को देखना था। श्री चहल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है जो मूर्ति पार्क के लिए अंतिम स्थान को तय करेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद नगर परिषद एक सम्मेलन आयोजित करेगा जिसमें पूरे देश से लगभग 15 प्रसिद्ध मूर्तिकारों को बुलाया जाएगा, जिनमें कई पद्म पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार भी शामिल रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी प्रवर्तन अभियान के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे जांच जारी है और दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी का पता लगाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 1948 में स्वीकार की गई मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को रेखांकित किया जाएगा। इस वर्ष के मानवाधिकार दिवस का विषय है हर रोज अनिवार्य जनसेवाएं और सबके लिए गरिमा। राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 9.2 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग के अनुसार कल सवेरे हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रह सकता है 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किए प्रदान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलसवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई मूलभूत सुविधाओं की घोषणा की। दिल्ली सरकार गोवा में हुए अग्निकांड को देखते हुए राजधानी में सभी होटलों, रेस्तरां और बार की कराएगी व्यापक जांच। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश वर्मा ने मुंडका विधानसभा क्षेत्र में स्थित गंझावला कराला नाले के निर्माण का शिलान्यास किया। और सरस आजीविका फूड महोत्सव 2025 के अंतिम दिन खाने के शौकीनों और हस्तशिल्प प्रेमियों में दिखा भारी उत्साह। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।